सपन्या अध्याय तीन। तीसरे अध्याय में परमेश्वर यरूशलेम के विरुद्ध कहता है। सपन्या अध्याय तीन पद एक और दो। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। इस शहर के विरुद्ध यहोवा का आरोप है, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। सपन्या अध्याय तीन पद तीन और चार। उसके हाकिम गरजने वाले सिम ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार है, जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यद् वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। यहां हम देखते हैं कि ये आरोप भी उन्हीं आरोपों की तरह है जिन्हें यिर्मयाह नबी ने अपनी भविष्यवाणी के द्वारा यहूदा और यरूशलेम पर लगाया था। आपको याद होगा कि यिर्मयाह ने कैसे इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बीच एक कठिन समय गुजारा था, जो आकर राजा से कहते थे, हे राजा, तुम इन सारी जगहों से बाबुल वासियों को धकेल या खदेड़ दोगे और वे तुम्हारे पास फिर नहीं आएंगे। आपको ये भी याद होगा कि झूठे नबी कैसे यिर्मयाह के खिलाफ साजिश रचते रहते थे, क्योंकि वो निडर खड़े होकर सच कहता था। इसी तरह यहां सपन्या नबी भी उन भविष्यद्वक्ताओं के विषय में कह रहा है कि वे कैसे व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की। सपन्या अध्याय तीन पद पांच से लेकर सात तक। यहोवा जो उसके बीच में है वो धर्मी है, वो कुटिलता ना करेगा, वो अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने अन्य जातियों को यहां तक नाश किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए, मैंने उनकी सड़कों को यहां तक सूनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता, उनके नगर यहां तक नाश हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका धाम उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नाश न हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। परमेश्वर की इच्छा वास्तव में यह है कि दंड सुधार के लिए हो। जब हम राह से भटकने लगते हैं तो परमेश्वर ताड़ना के रूप में हमें दंड देता है। इन सब बातों का एक ही मकसद होता है कि हम अपने बुरे कामों से फिरकर परमेश्वर के मार्गों पर चलने लगे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि लोग परमेश्वर द्वारा ताड़ना की लाठी के प्रयोग के उपरांत भी परमेश्वर से बलवा करते हैं और इस प्रकार उनकी स्थिति अधिकाधिक बिगड़ती जाती है। परमेश्वर कहता है, जब मेरा न्याय इस धरती पर आएगा तब वो मेरे लोगों के धर्मी बनने का कारण होगा। परमेश्वर की एक सच्ची संतान जब दंड को आते देखती है तो परमेश्वर की ओर मुड़ जाती है, परंतु यहां परमेश्वर अपने दंड की भविष्यवाणी कर रहा है और वे लोग कैसे और अधिकाधिक भ्रष्ट होते जा रहे। सपन्या अध्याय तीन पद आठ। इस कारण अब हम भविष्य में जाएंगे और राष्ट्रों के ऊपर आने वाले उस महान दंड को देखेंगे। सपन्या अध्याय तीन पद आठ में आगे लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने ये ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जलन की आग, जिसका जिक्र हम पुराने नियम में पाते हैं, पुराने नियम की जलन की आग और नए नियम का महाक्लेश दोनों एक है। यहां परमेश्वर उसी महाक्लेश के बारे में कह रहा है जब वो सारे राष्ट्रों को मगिदो की तराई में हर मिगदोन की बड़ी लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा। जहां वो बताता है वहां मैं उनके ऊपर अपनी जलन की आग और क्रोध की आग दोनों बरसाऊंगा। सपन्या अध्याय 3:8-9। क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई तब शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। आरंभ में सब मनुष्य एक ही भाषा बोलते थे, लेकिन जब मनुष्य ने वैज्ञानिक रूप में अच्छी तरक्की कर ली तब उन्होंने मिलकर एक ऐसी मीनार बनाना शुरू की जिसे वे आकाश तक ले जाना चाहते थे। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने बाबुल की उस मीनार को बनते हुए देखा तब कहा, सब मनुष्य एक जगह इकट्ठे हैं और तकनीकी तौर पर इतने आगे निकल गए हैं कि ये जो करना चाहे करेंगे और इनको कोई रोक नहीं सकता, अतः उनके बीच में मतभेद फैलाया जाए ताकि वे अपना काम पूरा ना कर सके। परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और उनको भिन्न भिन्न समूह में सारे विश्व में फैला दिया। परंतु अब वो दिन आता है जब हम फिर से एक शुद्ध भाषा बोलेंगे। मेरे यहूदी गाइड मार्गदर्शक से सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इब्रानी भाषा में शपथ का कोई शब्द नहीं है। जब किसी यहूदी को शपथ खानी होती है तो उसे अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करना होता है। उनकी भाषा में शपथ शब्द है ही नहीं। मैं और मेरी पत्नी माउंट स्कोपस के हदासा अस्पताल में थे और वहां हमने एक डॉक्टर को इब्रानी भाषा में अपने सहकर्मी के साथ बातें करते सुना। अपनी बातों के बीच उसने शपथ के कई अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया। मैंने पलटकर अपनी पत्नी से कहा, ये सच ही है कि शपथ के लिए इनके पास अंग्रेजी के सिवा और कोई शब्द नहीं है। उस डॉक्टर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये बहुत दिलचस्प बात है कि एक ऐसी भाषा भी है जिसमें शपथ के शब्द नहीं है। शायद ये शुद्ध भाषा हो, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं अपने लोगों से नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। सपन्या अध्याय 3:10-13। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएंगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से, जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। एक बार फिर यहां उस क्रम पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का प्रकोप जो आने वाला है, और उसके बाद नया युग, नई भाषा, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुरूप पृथ्वी का पुनरुद्धार और परमेश्वर की योजना, और पद 14 में परमेश्वर का महिमामय दिन अर्थात वो दिन जब प्रभु आएगा और पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करेगा। सपन्या अध्याय 3 पद 14 और 15। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इसराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस महान दिन जब यीशु आकर राज करेगा, एक बार फिर अपने प्रजा के मध्य वास करेगा, ठीक वैसे ही जैसे 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर वास किया था। वचन देहदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो इस जगत में था, इसकी रचना उसी के द्वारा हुई, परंतु जगत ने उसे ना जाना। वो अपने लोगों के बीच आया, परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब परमेश्वर की महिमा का अद्भुत दिन आ रहा है, जिसमें परमेश्वर लोगों के बीच रहेगा। आनंद का दिन, गाने का दिन, अद्भुत दिन। सपन्या अध्याय 3 पद 16 और 17। उस समय यरूशलेम से ये कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। अब वो परमेश्वर की प्रजा के मध्य प्रभु की व्यक्तिगत उपस्थिति की और ध्यान आकर्षित करता है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। सबसे पहले उसके पराक्रमी सामर्थ का उल्लेख है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है पराक्रमी है, फिर उसका काम, वो तुम्हें बचाएगा। सच में आज सारी दुनिया को छुटकारे की जरूरत है, आज मनुष्य को उद्धार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज मनुष्य जितना आगे बढ़ सकता था, सब कुछ खोए बिना बढ़ गया है। आज संसार में मनुष्य लाखों रुपए हर साल सेना और हथियार पर खर्च कर रहा है, जिसके कारण संसार कंगाल होता जा रहा है। हमारी आर्थिक हालत बहुत नाजुक है। रूस की आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब है, क्योंकि हम अपना ज्यादा पैसा सेना के हथियार और उपकरण पर खर्च कर देते हैं, इसलिए हम कंगाली की ओर जा रहे हैं। असल में जितनी हमें आवश्यकता नहीं है, उतना हम रक्षा के लिए खर्च करते हैं। अगले आने वाले 5 वर्षों में रक्षा योजनाओं पर खर्च के लिए करोड़ों का बजट है। आप इसको अंकों में सोच भी नहीं सकते। अगर आपको 1 खरब रुपए गिनने को दिया जाए, तो आपको 19 साल लग जाएंगे, जबकि आप दिन रात 100 रुपए प्रति मिनट की दर से गिन रहे होंगे। संसार को समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसकी सामाजिक रोगावस्था दिखाई देती है। अपराध, दुराचार, हत्याएं, दुष्कर्म आदि दिखाई देते हैं। कोई समाधान नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, केवल एक ही आशा है, एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। एक झूठा मुक्तिदाता आ रहा है, एक ऐसा आदमी जिसके पास अनेक नए नए तरीके हैं जो दिखावे के तौर पर आर्थिक स्थिति को कुछ समय के लिए संभाल लेगा, जिसकी वजह से अनेक सामाजिक बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे जुर्म पैसे के कारण ही होते हैं। दुकानें लूटी जाती हैं, पेट्रोल पंप लूटे जाते हैं, जेबें कटती हैं, पर्स छीनते हैं, ये सब आर्थिक लेन देन से ही जुड़ा है। एक आदमी आपके टीवी को तोड़कर चोरी का सामान खरीदने वाले की दुकान पर दे देता है और उसे पैसे मिल जाते हैं, ये सब पैसे के लिए होता है। इसलिए मुद्रा के चलन को पूरी तरह से समाप्त करने के द्वारा ये मनुष्य इन सामाजिक बुराइयों से बचने का एक अनोखा उपाय लेकर आएगा। वो सबको एक चिन्ह देगा जिसको कंप्यूटर के स्कैनर पहचानेंगे, एक ऐसा चिन्ह जो सबके दाहिने हाथ या माथे पर बनाया जाएगा। इस चिन्ह के बिना कोई भी कुछ खरीद या बेच नहीं सकेगा। सरकार कुछ करना चाहती है और इससे बढ़िया बात और क्या होगी कि मुद्रा विनिमय की झंझट ही खत्म हो जाए। अगर आप कुछ खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना होगा। कोई भी इस चिन्ह के बिना खरीदना या बेचना नहीं करेगा। इस तरह से उन्हें आपके सारे सामान के बारे में पता चल जाएगा। सारा लेन देन इस चिन्ह को इस्तेमाल करके ही किया जा सकेगा। ये कंप्यूटर बैंक में पैसे के बराबरी होगा जो कि कंप्यूटर सिस्टम में जमा रहेगा। इस प्रकार पैसे से संबंधित सारे जुर्म समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर में होगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, फिर कुछ लोग कंप्यूटर में सेंध लगाने का उपाय करेंगे, लेकिन ये जुर्म के रूप तो बदल ही देगा। इस नए तरीके को समझने में लोगों को थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 3.5 साल। इस तरह वो कुछ आर्थिक और कुछ सामाजिक समाधान लेकर आएगा। सारा संसार उसे अपना नेता कहेगा, मोक्ष दिलाने वाला कहेगा, झूठा मनुष्य, मसीह का विरोधी। ये यहूदियों से भी मित्रता करेगा, उनके संग समझौता करेगा कि वे अपने मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आज सब कुछ इसी रीति पर हो रहा है। अमेरिका की सरकार वहां रहने वाले हर इंसान के लिए एक यूनिवर्सल नंबर सिस्टम के उद्घाटन की योजना बना रही थी। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। जिस दिन मैंने ये अखबार में पढ़ा, उससे बहुत पहले मुझे इसके बारे में पता था, क्योंकि हमारा एक जानकार 7 साल पहले पेंटागन के एक गुप्त काम पर गया था। लौटने पर उसने ये सोचकर कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझसे कहा, चक, ये बहुत गुप्त बात है, परंतु मैं सोचता हूं कि तुम्हें बताना चाहिए। 1984 में मैं वॉशिंगटन डीसी में एक योजना पर काम कर रहा था, जिसमें पूरे संयुक्त राज्य में सबको एक नंबर देना था। सारी योजना बन चुकी थी, लेकिन किसी ने अखबार में ये खबर दे दी। इसलिए मैं तुम्हें बताकर कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। कितनी ज्यादा जरूरत है हमें बचाए जाने की। सिर्फ एक आशा है, यीशु मसीह। ये आदमी जो अपने को मसीहा कहेगा और दुनिया भी जिसे मसीहा समझेगी, इस दुनिया को ले जाकर ऐसी दुविधा में डाल देगा जैसी इस दुनिया में पहले कभी देखी और सुनी नहीं गई थी। पहले 3.5 साल तो सब हरा हरा दिखेगा, परंतु फिर मलाई खट्टी हो जाएगी और सारी बातें बिगड़ जाएगी। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, लेकिन तब यीशु आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा और अपने लोगों के बीच रहेगा। उन दिनों में कैसा आनंद, कैसा स्तुति गान और कैसा उल्लास होगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए एक प्रेम का गीत गाएंगे। सपन्या अध्याय 3:18 से लेकर 20 तक। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम दराई उनका बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। अतः महिमा के राज्य में इसराइल राष्ट्र के लिए आशीषों से भरी सपन्या की भविष्यवाणी यहां समाप्त होती है।